आज का हमारा मौजू बहुत तवील भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना हमारे पास टाइम है उसमें कंसाइजली समझ सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी मेरी सबकी तलब है, ईमान बिल गैब, यूमिनून बिल गैब, मरने के बाद हमारे साथ जो होने वाला है। अगर दुनिया में एक इंसान उसको अल्लाह ताला की दी हुई बसारत और बसीरत के साथ देख ले तो वहाँ हैरत नहीं होगी। आप देखिए कि कभी भी आप किसी भी जगह जब जाते हैं तो पहले से ज़हनी तौर पे परेशान होते हैं ना, नई जगह जाना हो, एयरपोर्ट पे भी क्यों ना जाना हो, किसी इवन जो लोग हज उमरे पे नहीं आए होते और फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो वो इतने एक्साइटेड होते हैं। पिछले माह हमने एक ट्रिप यहाँ का किया था तो हमारे साथ वो सिस्टर्स भी थी जो फर्स्ट टाइम आई थी, तो जो उनके जज्बात थे वो देखने के काबिल थे। क्योंकि इंसान अल्लाह के घर क्यों ना आए, पहली दफ़ा में घबराहट होती है। हाँ, लेकिन अगर पहले से ज़हनी तौर पे तैयार है, कुछ ट्रेनिंग्स ले चुका, कुछ वीडियोस देख चुका, तो घबराहट कम होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये सेशन इंशाअल्लाह ताला हमारे क़यामत के दिन के उस वक्त को जो हम सबको पेश आना है, थोड़ी सी घबराहट कम हो जाएगी। और अल्लाह ताला के कलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे कुर्बान जाने को दिल करता है कि जिन्होंने हमें वक्त से पहले सब बता दिया। आप किसी जगह जाने वाले हों और कोई आपको उससे पहले ही बता दे कि वहाँ ये होगा, उधर ये तुम्हारे साथ होने वाला है, तो हम उसके कितने मशकूर होते हैं। तो आइए दिल की गहराई से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और दुरूद पढ़ते हुए शुरू करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें ये सारा दीन ना देकर जाते तो आज हम किन अंधेरों में होते। आप सबने सीरत भी सुनी है, कई दफ़ा पढ़ी होगी, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इंसानियत जहालत का शिकार थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ना सिर्फ ये कि उस दौर के तकाज़ों के बारे में बताया, बल्कि क्या बताया हमें कि तुम्हें इस दुनिया में रहकर कैसे तैयारी करनी है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर, ईमान बिल गैब। ये है जी हमारी सीरीज। थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ आज के लेक्चर का कि अगर आपको ये लेक्चर आज के बाद कहीं और सुनना हो बाद में तो कहाँ से सुनेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, नूरुल कुरान टीवी, NURULQURAN TV। जो लोग सुनते हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता तो उनके लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा इस बात से। और इसके साथ साथ फेसबुक पे भी आ रहा है माई नूरुल कुरान के नाम पे। नूर के लफ्ज़ में यू आता है, NURULQ, आगे कुरान के लफ्ज़ आपको आते हैं। तो ये मेन सीरीज़ क्या है, बिलीफ इन अनसीन, ईमान बिल गैब, अनदेखी दुनिया पर ईमान लाना। उसमें से हमारी जो सीरीज़ इस वक्त चल रही है वो क्या है, ईमान बिल आखिरा। ईमान बिल आखिरा क्या है कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए उस अगली दुनिया में जो कुछ उसको पेश आने वाला है उस पर यकीन रखे। हम सब सूरत फातिहा में एक दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह सुबहाना ताला उस दुआ की कबूलियत के जवाब में क्या कहते हैं, क्या वाकई तुम्हें हिदायत चाहिए, तो ज़ालिकल किताबुला रईब फ़ीह हुदल मुत्तकीन। ये है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं और मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। यानी हिदायत पाने के लिए आपको मुझे इस किताब की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि हिदायत तो मिलेगी मुत्तकीन को, तो मुत्तकी कौन है? ऐसे ही है ना, आपको कोई काम करना है तो आप उस काम के लिए काबिल हैं भी कि नहीं, तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या होता है कि आपकी शराइत क्या है। तो फिर शराइत बताई गई, अल्लज़ीन यूमिनून बिलग़ैब व यक़ीमून सलात से लेके वबिल आखिरती हूँ यूक़िनून। हम सब बचपन से सूरत बकरा पढ़ते आ रहे हैं, पहली 5 आयतों में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफ़ात बता दी। तो हमारा आज का ये सेशन मुत्तकीन की पहली सिफ़त यूमिनून बिलग़ैब पर है। और यूमिनून बिलग़ैब के अंदर सब कुछ आता है, जो 5-6 चीज़ें हैं हम इस पूरी सीरीज़ में वन बाई वन एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त हमारा मामला क्या है, ईमान बिलग़ैब में, आखरत के मामले पे, और आखरत के भी बहुत से टॉपिक हो चुके हैं। आज अगर आप पहली दफ़ा इस मौजू पर सुन रहे हैं तो माशाल्लाह, आप मेरी बहनें जो मेरे साथ बैठे सुन रहे हैं, आपके लिए एक लंबा होमवर्क है। चाहे 6 माह में कर लें या 6 दिन में कर लें, यूट्यूब पे ये सीरीज़ साथ साथ चल रही है, तो आप पहले से लेके अगले अगले सुनते जाइए। इंशाल्लाह एक दिन आप इस लेक्चर को भी यूट्यूब पे देखेंगे। ठीक है, और फेसबुक पे भी। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंसान और रोज़े जज़ा। क्या फील होता है, रोज़े जज़ा सज़ा क्या है, जिस दिन इंसान के अमाल का बदला मिलना है। कहते सुनते तो हम बचपन से रहे, क्या मतानी है, मरने के बाद ये होगा। क्या आप में से कोई मेरी ऐसी बहन है जिसके लिए ये लफ्ज़ नए है, क़यामत, हशर, नशर, जजा, सज़ा, आमालनामा, जन्नत, जहन्नम, कोई भी तो नया लफ्ज़ नहीं है। वी आर ग्रोन अप विद दीज वर्ड्स, हम इन लफ्ज़ों के साथ बड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या वाकई हमें यकीन है कि आखिरत आने वाली है? क्या हमें यकीन है कि क़यामत आएगी? यकीन कीजिए, एक जुमला मैं अक्सर बोलती हूँ, आप सबके लिए भी बोल देती हूँ, इल्म आखरत और है और फ़िक्र आखरत बिल्कुल और है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म है आखरत का और हम उस इल्म पर यकीन भी रखते हैं। बींग अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि मरना है और मरने के बाद दोबारा उठाया जाना है। बास बाद नशूर, नशूर और बास है उसके बाद, है ना। मक्का वालों का अल्लाह के नबी के साथ जो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, झगड़ा था, वो यही था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे। मैं यूशी निज़ाम अबही रमीम, सूरत यासीन के आखिर में आता है। हम शुक्र है अल्लाह का, अभी तक हम मुसलमान जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हम बड़े हुए हैं। इस कलमे को पढ़ते सुनते हम सब मानते हैं कि मरने के बाद जीना है। अल्लाह का शुक्र है, अभी कम अज़ कम ये नेक्स्ट जनरेशन जो आप मेरे सामने बैठे हैं, हम में से किसी के ईमान में अभी इस चीज़ का कोई शक नहीं है कि ये नहीं होगा। ये अलग बात है कि आज हमारी वो नस्लें जो गैर इस्लाम की नज़र से इस्लाम को देख रही हैं, उनको शक पैदा हो चुका है। ये तो एक दर्द बड़ी कहानी है ना, उसको नहीं छेड़ रही कि हमारी यूथ किधर है। आप तो माशाल्लाह इतने प्यारे खूबसूरत मुल्क में बैठे हैं, अल्लाह इस मुल्क की भी हिफाजत करे और आप सबकी भी करे। आपके पास मेरा हाल 99.9% मुसलमान आबादी है। अल्लाह ताला ने मौका दिया है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने का, वो जगह जहाँ मुसलमान मिनोरिटीज़ में और ज़हनी गुलामी का शिकार है, तो वहाँ के बच्चे अब आखरत पर भी एतबार करने को तैयार नहीं, वो अल्लाह को मानने को तैयार नहीं। वी डोंट बिलीव इन गॉड। वो जन्नत जहन्नम के ख्वाब माँ बाप को ऐसे कहते हैं जैसे गोया कि ये एक झूठी मूठी ख्वाब थे जो आप हमें दिखा रहे थे। वजह क्या है कि हमें इल्मे आखरत तो है, फ़िक्रे आखरत नहीं है। एक छोटी सी मिसाल से ये बात बड़ी अच्छी समझ आती है। आप किचन में काम करती हैं और आपका बच्चा एकदम बाथरूम में से चीख के बोलता है, मामा पानी गर्म आ रहा है, उबलता पानी आ रहा है शावर में। ये भी आपके लिए एक बड़ी तकलीफ़ की खबर होगी, आप एकदम घबरा जाएंगी। लेकिन अगर बिलफर्ज आप खुद वॉशरूम में जाएं और अपनी आदत के मुताबिक टूटी खोल कर सर नीचे कर दें, तो उबलता पानी जब सर पे पड़ेगा, उसमें और बच्चे से बात सुनने में बहुत फ़र्क है। ऐसे ही है ना, क्योंकि वो एक खबर थी जो आपको मिली कि पानी गर्म है, उबलता पानी आ रहा है, और ये एक हकीकत है कि आपके सर पे गर्म पानी आ गया। हकीकत यह है कि अगर हमें इंसान और रोज़े जज़ा का और सज़ा का हकीकी नक्शा समझ आ जाए, मरने के बाद हमारे साथ क्या होना है, तो ये दुनिया बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया होती, जहाँ कोई झूठ ना बोलता, जहाँ कोई किसी का हक ना मारता, जहाँ कोई ज्यादती ना करता। कभी कभार वंस अ वाइल, जैसे कहते हैं वंस अ ब्लू मून, कोई अगर गीबत कर लेता या बहन कोई कर लेती, तो फौरन जाकर उस बहन के पीछे पड़ जाती कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बुराई कर दी है। क्यों? क्योंकि फ़मैया मल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा और शर्रिन यरा मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीत। तुम्हारे मुंह से जो एक जुमला निकलता है, जो एक लफ्ज़ निकलता है ना, उसको भी लिखने वाला लिख लेता है। फिर कभी झूठ बोले। आज दुनिया में इंसानों को जितने मसाइल हैं, उन सब को सामने रखते हुए अगर आप और मैं अपने बारे में सोचें, तो एक मिसाल से समझाती हूँ। कई लोग बिजली पानी को मसला समझते हैं, गर्मी सर्दी मसला है, कोरोना मसला था, इसी तरह घर छोटे बड़े, जॉब है कि नहीं, बीमारी है, परेशानी। यानी अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपको ज़रा सोचिए क्या क्या मसाइल हैं, तो मेरे लिए एक लंबी लिस्ट है। जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको फिक्र है इनके रिश्ते हो जाएं, जिनके शादियां हो गई उनको ये गम है कि ये शादी निभ जाए सही, ये टूट रही है, इसको गड़बड़ है ना। अब ये सारे जितने मसले हैं ना, ये दुनिया के गम है। इसको एक मिसाल से समझिए। एक बाप अपने साथ छोटे छोटे अपने बच्चों को लेकर जंगल में जाता है। बच्चों ने बाप की उंगली पकड़ी हुई है कि नहीं, लेकिन बाप की नज़र किधर है, ज़मीन पे चलते फिरते देख रहा है कहीं कीड़े हैं, कहीं मकोड़े हैं, कोई हो सकता है कि और ऐसी खतरनाक चीज़ें दिखें उसको, तो वो क्या करेगा, उसकी तवज्जो किस पे, कि कोई चींटा मेरे बच्चे के पाँव पे ना चढ़ जाए, कोई चींटी जो है वो मेरे बच्चे को ना काट ले, उसको छोटी छोटी चींटियाँ चींटे जो वो बहुत बड़े मसले दिखेंगे। इतने में अगर उसी में दूर से एकदम शेर के चिंघाड़ने की आवाज़ आ जाए या भेड़िए की पुकार हो, और आवाज़ भी ऐसे जैसे इसी तरफ आ रही है जिधर वो इंसान मौजूद है, आप मुझे बताइए अब उस बाप का सबसे बड़ा मसला क्या होगा। उसका मसला शेर है, चुनखिया चुनटे नहीं है, उसका मसला भेड़िया है कि कहीं ये भेड़िया मेरे बच्चे को ना खा जाए, ये शेर कहीं मेरे बच्चे को चीर फाड़ ना जाए। अब कोई उस वक्त पूछे कि वो देखो ना नीचे चुनटी भी जा रही है, वो चूटा भी जा रहा है, तो वो उस बाप को कुछ फिक्र होगी उन चुनटों की, चुनटियों की, बस लिख लीजिए एक जुमला, लिखें जितना लिखेंगे ना उतना दिल पे उतरता है, और वो बात फिर बाद में याद भी रहती है, और लिखते ही अच्छे लगते हैं ताले बिल। अब हुआ क्या, एक जुमले में बोलती हूँ, दुनिया के शेर ने दुनिया की चींटियां चूंटे भुला दिए, आखरत फिक्रे आखरत का शेर, आखरत का मसला बंदे को दुनिया के सब मसलों से बेनियाज कर देता है। जी असल बात यह कि हमें दुनिया के मसले इसलिए बड़े लग रहे हैं कि हमने आखरत को बड़ा मसला ही नहीं बनाया। रोज जीते हैं रोज मरते हैं, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आज सुबह से लेकर रात तक एक इंसान की जिंदगी की मसरूफियात को देख लीजिए, मर्दों की मसरूफियात अल्हम्दुलिल्लाह कमाने की, बच्चों की पढ़ने की, टीनेजर्स की कैरियर बिल्डिंग की, और आप जैसी मेरे जैसी घरेलू खवातीन का सबसे बड़ा मसला क्या है कि खाना पक जाए, घर साफ हो जाए, मेहमान आ रहे हैं तो उनकी खातर हो जाए, ये हम सब क्या लाइफ स्पैन चल रहा है ना। लेकिन अगर आप देखें कि क्या आप और मैं सिर्फ इसलिए पैदा किए गए थे कि अपनी जिंदगी बनाएं, आज अगर आप सहाबे कराम को देखें, उनकी सीरास पढ़ें, उनकी जिंदगियां पढ़ें, तो एक बड़ा फिक्रा जो जुमला सहाबा और हमारे बीच के फर्क को नुमाया करता है वो क्या है कि सहाबा कराम तारीख साज थे और हम खुद साज हैं। आसान उर्दू बोल दूं, सहाबा ने तारीख लिखी, वो तारीख बना कर गए और हम खुद को बना रहे हैं। आज हमारा काम ये है, हम जाती जिंदगी जीना चाहते हैं, वी लिव आवर इंडिविजुअल लाइफ, आवर ग्रीव्स आर आवर ओन ग्रीव्स, आवर हैप्पीनेस इज आवर ओन हैप्पीनेस। हमें अपने बच्चों की फिक्र है, वी केयर अबाउट आवर बच्चों की शादी वेडिंग। साहबा को दीन की फिक्र थी, क्यों उनका इतना मुकाम था, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के दीन को चूज़ किया था। आज भी अल्लाह ने गिनती के वो लोग रखे हैं दुनिया में कि जिनको अपनी ज़ात से ज़्यादा दीन की फिक्र है, जो अल्लाह के दीन के काम को अपने हर नफ़े और नुकसान से ऊपर लेकर चलते हैं। उनको भी घर बनाने का शौक हो सकता है, उनके पास भी कमाने की स्किल्स खाने की, बट वो क्या कहते हैं, कुन तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। हमें दुनिया की गंदगी मिटानी है, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, उनको दुनिया के अंधेरे मिटाने हैं, और वो कौन सी उम्मत है, वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी आप और मैं अपना मुकाम पहचान लें, आज यहाँ बैठकर रोज़े जज़ा को जानने से पहले ज़रा सा अपने इस दुनिया के मुकाम को तो पहचानिए, कितने खूबसूरत नबी की उम्मत, वो नबी के जिनके लिए अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान पाक में इतने खूबसूरत बातें कर दी, कहीं या युहल मुज़म्मिल, कहीं या युहल मुद्दसिर, कभी उनको सिराज मुनीरा कहा। क्या उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आज मेरी और आपकी ज़िंदगी मिलती है। कपड़ा लेते हैं ना, दुपट्टा मैच करते, कभी ट्राउज़र मैच करते, कमीज़ मैच करते, कभी आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी और अपने लाइफस्टाइल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जाकर मैच करें। सेम है, वहाँ सिबगतल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा का रंग था, आज हम किसके रंग में रंगे हुए हैं, जैसा देश वैसा भेस। यहाँ तो आपके लिए बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई मुझसे तो पूछे, हम उन मुल्कों से गुजरते हैं जहाँ निकाब बैन है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी इसी रूप में होते हैं जिसमें आज आप मुझे आता जाता देख लीजिएगा भाई। हम तो कभी इम्प्रेस नहीं हुए इन लोगों से, हम जैसे लोगों को अल्लाह ताला एक ऐसा खूबसूरत मौका देता है, जाओ तुम इन लोगों को अल्लाह के दीन से मिलाओ, इनको पुकारो, क्या पता तुम्हारी कोशिश कोई एक दीन पे आ जाए। सॉस और खूंटों से बेहतर होगा। तो मते मुस्लिमा का जो वजह तासीस थी ना, मकसद हयात था, वो दावा थी, दावत इल्लाह। आज आप इस खूबसूरत से ये दावा सेंटर में, अल्लाह इसको क़यामत तक आबाद रखे, अल्लाह इसको आबाद रखने वालों को आबाद रखे, जो इसकी फ़िक्र करते हैं उनके फ़िक्र अल्लाह टाल दे। मन कान लिल्लाह ही कान अल्लाह लहू। और हकीकत है कि आज के दौर में दावत इल्लाह ही वो काम है जो आपको मुझे ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून की ज़िंदगी बसर कराएगा। क्यों? हमने जब अल्लाह के दीन को पीछे डाल दिया, हमें अल्लाह ने हमारे गम पकड़ा दिए। हमें शौक है बच्चे की तरह, मैं अपना काम खुद करूंगा, बच्चा जूता भी पहन रहा, मैं खुद ही पहनूंगा, मैं खुद ही खाऊंगा, आधा मुंह में आधा नीचे। माँ कहती है बेटा मैं तुम्हें खिलाती हूँ, बेटा तुमसे नहीं खाया जाएगा। लेकिन आप खुद रहे होते हैं ना, बचपन में बड़ा शौक होता है इन चीज़ों का। हमें अपने काम खुद करने का शौक है। और क्या आप और मैं तो माशाल्लाह आप बहनों को देख के खुश हो रही हूँ। आप इस वक्त एक पुकार पे, सिर्फ एक दिन के नोटिस पे आ गए, लेकिन अमूमन हमारे घर हमें अल्लाह के दीन के लिए नहीं निकलने देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाही साक़लतुम इलल अर्ज़। ऐ ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया? जब तुम्हें अल्लाह के लिए पुकारा जाता है तो तुम्हारे ज़मीन पे कदम बोझल हो जाते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं तुम्हारे कदम मन मन भर के हो जाते हैं। नहीं, असल बात है कि रदी तुम बिल हयात दुनिया, तुम इस दुनिया की ज़िंदगी का शिकार हो गए हो, तुम्हें इस दुनिया की फ़िक्र लग गई, तुम्हें वहन आ गया। अल्लाह के नबी की वो हदीस याद कीजिए कि एक वक्त आएगा कि गैर मुस्लिम दूसरे गैर मुस्लिमों को दावत देंगे, आओ मिलकर मुसलमानों के ऊपर हमला करें। तो सहाबा का पहला जुमला क्या था? क्या अल्लाह के नबी उस वक़्त मुसलमान थोड़े होंगे? तो आपने क्या कहा? नहीं, थोड़े तो नहीं होंगे। हाँ, उस वक़्त इनको एक बीमारी लग जाएगी, और वो वहन की बीमारी होगी। फौरन पूछा मम्मल वहन, अल्लाह के नबी वहन क्या है? फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत। क्या आज उम्मत मुस्लिमा इसका मुंह बोलता सबूत नहीं है? जितना एक गैर मुस्लिम को ख्वाहिश है जीने की, इतनी हमें भी ख्वाहिश है। अल्लाह ने सूरत बकरा के पहले पारे में हमें बता दिया कि इनमें से तो हर एक क्या चाहता है, कहीं यम मरल फसनत, 1000 साल की उम्र दी जाए। तो क्या आज आप पर मैं सिर्फ दुनिया की जिंदगी पे नहीं खुश होते? तो आज इंशाल्लाह हम देखेंगे क्यामत के दिन के 21 असूल। मैं अपने मौजू को ये ऊपर स्टिकॉन रहना चाहूँगी, ताकि आपको एक एक कम अज़ कम खुलासा दे सकूँ, एक जिस्त दे सकूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने जो मेयार रखे हैं। देखिए, हर मुल्क का एक कानून होता है ना, आप उसको कानून कह लें, शरिया कह लें, लॉ कह लें, लेजिस्लेशन कह लें, हर मुल्क का अपना नाम है ना। पाकिस्तान जैसे मुल्क का भी एक कानून है, इंडिया का भी एक कानून है, फ्रांस का भी एक कानून है, अमेरिका और नॉर्वे का भी एक कानून है ना। तो अल्लाह ताला के कुछ कवानीन हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इस नशिस्त में हिसाब किताब के कुछ असूल और जवाबित देखेंगे। और ये हिसाब किताब जो होगा जब, तब तो होगा, आज ही पता लग जाए। छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि आप जहाज़ में ट्रेवल करते हैं, यहाँ से इंडिया या पाकिस्तान जाते होंगे ना, कोई बंगाली सिस्टर बैठी होंगी तो वो बांग्लादेश जाती होंगी, उसकी भी मिसाल दे देती हूँ। तो जब आप जाते हैं तो जहाज़ में बैठते ही आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स बताए जाते हैं, ऐसे करना, ये करना है, सीट बेल्ट बांधनी, ये करनी, रूल्स होते हैं। आप किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो क्या उस बिल्डिंग में दाखिल होते ही आपको मुझे वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बताए जाते? ये कर सकते हैं, यदि एयरपोर्ट पर जाते हैं तो बताया जाता है इधर नहीं जा सकते, इधर जा सकते। आज आपको बताया कि यहाँ बैठकर आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ना ऑडियो, ना वीडियो, ना कॉल, ना फोन। तो एक रूल है ना मैनेजमेंट का। तो क्या ये असूल नहीं है? है ना। बिल्कुल इसी तरह क़यामत के दिन हिसाब किताब के जो असूल और जवाबित हैं, आप मेरे से लिस्ट बनाइए। सबसे पहला असूल क्या होगा? कि उस दिन मुकम्मल इंसाफ होगा, जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। अल्लाह सुबहाना ताला ने आपकी मेरी सारी खुशफहमी और गलत फहमियाँ दूर कर दी, कि तुम ये ना सोच लो कि वहाँ जाकर तुम्हें शायद कोई पूछेगा ही नहीं और तुम्हारे साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा। हकीकत है कि उस दिन जुल्म नहीं होगा, मुकम्मल इंसाफ होगा। आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला की सुन्नत देख लीजिए। अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए जो चीज़ें रखी हुई हैं, अगर उसको हम सामने कर लें तो हमारे बहुत सारे मामले दुरुस्त हो जाएंगे। और वो मामले क्या हैं? कि अपनी फ़िक्र करो, तुम इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दुनिया बनाई, इसके अंदर जुल्म कर लो, ज़्यादती कर लो, किसी का माल हड़प कर लो, किसी की जायदाद खा लो, तुम्हें पूरा इख्तियार मौजूद है। आज आपको मुझे इख्तियार मौजूद है ना, आपके शौहर अल्लाह उनको सलामत रखे, आपके बाप और आपके भाई को अल्लाह सलामत रखे, क्या उनको पूरा इख्तियार मिला हुआ है इस बात का कि वो हलाल कमाएं या हराम, है ना, चॉइस उनकी। बिल्कुल इसी तरह से क्यामत जब आने वाली है, उस दिन में अल्लाह सुबहान तआला जो आदिल है, जो मुनसिफ है और जो रहीम और करीम है, वो हर बात का हिसाब भी रख रहा है। आज उसने एक एक जुमला, एक एक छोटी छोटी बात लिखी हुई है। वकुल्ला इंसान इन अल्जम ना हो तो रहूफ़ी उनकी व नुखरी जो लहू योमल क़ियामती किताब अल्का मंशूरा। क़्यामत का दिन होगा, इकरा किताब कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज तुम्हारे हाथों में एक किताब दी है, आज तुम लिख रहे हो, आप और मैं लिख रहे हैं इस वक्त। अगर आप में से कोई नहीं भी लिख रहा ना, तो रियल में आप और मैं लिख रहे हैं। हर रोज सुबह अल्लाह ताला आपकी मेरी किताबें जिंदगी का एक सफ़ा पलट देते हैं, और आप जो सोचते हैं वो लिख रहे हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो दिल में ख्याल आते हैं, हत्ता कि दिल के हिसाब की बातें भी लिखी जाती है। ये अलग बात है कि अल्लाह फिर उसका मुआवजा ना करे। और क्यामत के दिन आप और मैं उसको पढ़ेंगे। आज राइटिंग है, दुनिया इज राइटिंग पीरियड, एंड डे ऑफ जजमेंट विल बी रीडिंग पीरियड। उस दिन होगा, अल्लाह ताला कभी किसी पे जुल्म नहीं करता, तो उस दिन मुकम्मल इंसाफ होगा, ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। याद रखिए कि इंसान होने के नाते हम सब के जिम्मे दो तरह के हकूक है। आपसे मुझसे क़यामत के दिन दो बातों के बारे में पूछा जाएगा, एक है हकूकुल्ला और दूसरे है हकूकुल इबाद। एक अल्लाह के हक और एक बंदों के हक होंगे। इन दोनों तरह के हकूक के हिसाब किताब में अदल और इंसाफ का पूरा लिहाज होगा। हकूकुल्ला में अदल इंसाफ के हवाले से ये बात याद रखिए, ये अल्लाह और बंदे का मामला है। तमाम इंसान अल्लाह के बंदे और उसकी मखलूक हैं, सब के सब लोग अल्लाह ताला के बंदे और उसकी मखलूक हैं, और अल्लाह अपने बंदों को काफ़ी है। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ क़यामत के दिन क्या मामला करे, उसको पूरा इख्तियार है। इंसान होने के नाते सब बंदे अल्लाह ताला की निगाहों में बराबर है। कोई अरबी, कोई अजमी, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई पतला, किसी का कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल हम सब को उसने कैसे पैदा किया, या अय्युहन नास उत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, फिर हमारे हसब नसब बना दिए, रंग नस्ल माल दौलत वगैरह दी। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह यतक़ाकुम, तुम में मुत्तकी जो ज़्यादा होगा ना, वो अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला है। ईमान और तकवा ही किसी की इज्जत और उसकी जिल्लत का जरिया बनेगा। क़यामत के रोज़ इसी मेयार की बुनियाद पर आपके मेरे फैसले होंगे। अच्छे अमाल का अच्छा बदला, बुरे अमाल का बुरा बदला होगा। फैसला करते वक्त पूरे इंसाफ से काम लिया जाएगा, किसी पर राय बराबर के जुल्म और ज्यादती नहीं की जाएगी। मैं आपको कुरान पाक की चंद आयतों के नंबर बोलती हूँ, आप लोग सिर्फ नंबर लिख लें, पूरी आयत लिखने की ज़रूरत नहीं, जगह छोड़ दें। घर जाकर आप वो कुरान पाक में से खोल कर लिखिए। सबसे पहले सूरत बकरा की आयत नंबर 281 है, वत्तकु यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। और इस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, और हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और इन पर जुल्म न किया जाएगा। 3 सेकंड सोचिए, मैं किसी पे जुल्म तो नहीं करती? घर में काम के लिए आई हुई मेड, मासी, खाला, बुआ, कोई मेरी उस पे ज्यादती तो नहीं है? क्या मैं कहीं किसी से कुछ कर्ज लेकर उसको वापस लौटाने में नॉन सीरियस तो नहीं हूँ? कहीं मैंने खानदान में किसी औरत पे जुल्म तो नहीं कर दिया? यदि दसियों किस्म की बातें हैं, आज ही सोच लीजिए, माफिया मांग लीजिए, कल बड़ी सख्ती आने वाली है। दूसरा मुकाम कुरान पाक का, वो भी नोट कीजिएगा, सूरत निसा आयत 40, इन्नल्लाहा ला यस्लिमु मिसकाल ज़र्रा, बेशक अल्लाह ताला एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। चलिए आज एक दुआ करते हैं अपने लिए भी, कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझे जालिमों की लिस्ट में ना खड़ा करना। मजलूमों में हो गई तो कोई बात नहीं, तो बदला देगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल है, कहा करते थे कि क़यामत के दिन मैं किसी जगह मजलूम बनाकर खड़ा किया जाऊँ, यानी मेरे पे दुनिया में जुल्म हो मुझे ये गवारा है, लेकिन मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि क़यामत के दिन मैं जुल्म करने वालों में हूँ। सास होने के नाते कहीं मैं जुल्म तो नहीं करती बहू पे, बहू होने के नाते मेरा जुल्म तो नहीं है किसी पे, अपने ससुराली ताल्लुकात से अपने शोहर को खिलाफ तो नहीं मैं करती। नंद और बहन के फर्क में कहीं मैं अपनी नंद के बारे में बदगुमानियां तो नहीं अपने शोहर के दिल में डालती। और इस तरह जुल्म सोच लीजिए, कहीं दोस्तों में, कहीं अब अखबार में कहीं जुल्म तो नहीं है। और ये जुल्म अंधेरा होगा, इन जुल्म अल जुल्मत, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का जरिया बनेगा। और इन शिर्क अल जुल्म नसीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, अंधेरा है। जो अल्लाह का हक ना पहचाने उसने बंदों का कहाँ पहचानना है। तीसरा मुकाम नोट करेंगे, सूरत निसा आयत 77। قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی محبت دل میں محسوس کرتے ہیں؟ میں تو جب بھی قرآن پڑھوں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ قل کہا جاتا ہے جیسے یہاں بھی ہے تو میری عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں تک قل پہنچانے میں نبی نے اپنی پوری زندگی تج دی۔ آپ دیکھیے کہ آپ بیوی بچوں والے تھے، آپ کے بس کس چیز کی کمی تھی؟ 40 سال کی زندگی ہے ایک بندے کی، بہت حسین زندگی ہوتی ہے، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، کاروبار بھی تھا۔ بی بی خدیجہ کے پیسے سے جو کام شروع ہوا، اللہ کے نبی کی امانت داری اور صادق اور امین کا لقب ملا، اللہ نے اس میں برکت دی۔ 40 سال کی عمر میں جب یہ سب ہو تو مزہ کرتے، لیکن آپ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اس پکار کے بعد کیا کیا؟ قم فانذر کا حق ادا کر دیا۔ ابتدائی وحی میں سورہ مزمل اور مدثر بھی آ گئی تھی۔ یا المزمل کہا تو اٹھو، راتوں کو اٹھا کرو، قیام اللیل کرو، ساری رات سونے کی نہیں ہوتی یا ساری رات بیٹھ کے باتیں اور گپے نہیں مارتے۔ مسلمانوں کی محفلیں راتوں کو نہیں برپا ہوتی اور فجر کے قریب ان کی آنکھ نہیں لگتی۔ اور دوسری صورت، یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹ کر سونے والے اٹھ جائیے، آپ سونے کے دن گئے، کیا کیجیے؟ قوم فانذر، قوم فانذر، سٹینڈ اپ، کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے۔ ساری محبت نبی کے لیے دل میں رکھ کر سن لیجیے، اللہ کے نبی قوم فانذر کے حکم پر پھر ایسے اٹھے کہ زندگی کے آخری دن تک آپ کی زبان پہ کیا بات تھی؟ الصلات وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کی فکر کرو اور اپنے لونڈیوں غلاموں کی فکر کرو، مردوں کو کہا اپنی بیویوں کی فکر کرو۔ یعنی کیا پتا چلا کہ پھر آپ کی زندگی کا ایک ایک دن اس ابلاغ کے لیے گزر گیا۔ سوال کرتے ہیں خود سے، میں دعوت اللہ کے سلسلے میں کیا کام کر رہی ہوں؟ دنیا بھری پڑی ہے، انسانیت، اللہ کی مخلوق، اللہ سے دور، ایتھیسٹ۔ اللہ نے ہمیں کئی سال سے ناروے سے جوڑا ہوا ہے، ان کا مذہب ایتھیزم ہے، لا دینی ہے، جس کو اردو میں آپ دہریت کہتے ہیں، ان گاڈ وی ڈونٹ ٹرسٹ۔ آپ جتنا ویسٹ ہے، امریکہ، کینیڈا سے لے کے پورا یورپ، وہ کرسچین کنٹریز ہیں، لیکن وہ نام کے کرسچینز ہیں آج، ان کا لا الہ الا اللہ بدل چکا ہے۔ اور وہاں جو دعویٰ اپرچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں اور جو دن رات الحمدللہ اس پہ کام ہوتا ہے، یہ نتائج تو وہاں رہنے والے جانتے ہیں نا۔ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ سے اتنا حساب نہیں ہونا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تکلیف برداشت کر لی کہ میں فاطمہ اور رقیہ اور ام کلثوم اور اپنی بیٹیوں کی شادیوں کی فکروں سے بڑھ کر یہ فکر کروں کہ انسانیت اللہ سے جڑے۔ 3 دفعہ اللہ قرآن میں گواہی دیتے ہیں کہ نبی کو بخا کی کیفیت تھی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ہر جمعہ آپ سورہ کہف کی یہ 7-8 نمبر آیت پڑھتے ہیں نا، کہ نبی آپ تو لگتا ہے اپنے آپ کو ذبح کر لیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ سورت شعرہ میں دیکھ لیجیے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ يُؤْمِنُوا، تو کیا پتہ چلا کہ یہ بخا کی کیفیت کام کراتی ہے۔ ہر ایک کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، ہر ایک بیٹھا بیٹھا مزے کرے، موجیں کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، میرا گھر میری جنت، مائی ہوم مائی پیراڈائز، سکھ اور چین کی بانسری بجائے۔ عورتیں ایک رات گھر سے باہر نہیں رہنا پسند کرتی، کہیں سفر کر کے آ جائیں، ایک ہفتہ بستر پہ رہتی ہیں، ان کے جیٹ لاک ہی نہیں ختم ہوتے۔ لیکن کچھ لوگ تو دنیا میں ایسے ہوں کہ جن کا زندگی کا شعار کیا ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے میں اس مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ हमारी नमाज रोज़ा भी हमें ये सिखाती है कि हम लोगों के नफ़े के बने। तो क़यामत के दिन अल्लाह किसी का हक नहीं मारेगा। अगर दुनिया में अल्लाह के रास्तों में निकल कर कोई तकलीफ हो भी गई, कोई कांटा चुभ गया, चुभता कोई नहीं है। ज़िंदगी ये है, ज़िंदगी वे बंदगी बराए बंदगी, वही ज़िंदगी है। ज़िंदगी का मकसद बंदगी है, और बंदगी की आला किस्म बंदों को रब से जोड़ना है। हकूक उल इबाद में क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं, कुल मता दुनिया कलील, दुनिया का फ़ायदा तो बहुत थोड़ा है, वल आखिरत तो खैरुन, और आखिरत तो बहुत बेहतर है। किसके लिए? लिमन तका, जो परहेजगारी इख्तियार करे। वला तुज़लमूना फतीला, और तुम पर ज़रा बराबर धागे के बराबर जुल्म ना किया जाएगा। तो आज अगर आप अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो खुशी से करिए, रोते हुए ना करें, धोते हुए ना करें। कोई तरस ना खाए, हाय फलां मर गए, फलां शहीद हो गए, हाय फलां तबलीग में चले गए, फलां नहीं, वो सब उनका इन्वेस्ट हो रहा है, कल पलट के आएगा। इसी तरह याद रखिए कि हकूकुल इबाद में भी अल्लाह ताला को अदल व इंसाफ पसंद है। क़यामत के दिन क्या होगा, एक हदीस सुन लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में मोहब्बत को महसूस करते हुए हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इक्तता हक कमरी मुस्लिमिन बियमीन ही फ़कद औजबन अल्लाहु लहु नार। क्या आप ज़िंदगी का वो मकसद हासिल कर पा रहे हैं? और इस दुनिया में थोड़ी सी माफ़ी मांग लेना, छोटी सी बात किसी के साथ अगर ज्यादती हुई या की, माजी में की, बचपन में की, जवानी में की, और अमूमन रिश्तों में हो जाता है। गैर तो हमें नहीं जानते, लेकिन अपनों को पता होता है कि ये बंदा कितने पानी में है। तो मैं आपको थोड़ा सा सोचने का मौका दे रही हूँ कि आप इस बारे में सोचिए कि अल्लाह मुझे मेरी उस ज्यादती पे तू माफ़ कर दे। इसी तरह एक और रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने गुलाम को एक कोड़ा भी नाजायज़ मारा तो उसे क़यामत के दिन इसका बदला दिया जाएगा या उससे बदला लिया जाएगा। ये तरगीब व तरहीब की रिवायत है 5282। अब आज गुलामी को तो आप और मैं नहीं समझ सकते, लेकिन क्या आप और मैं इस बारे में गौर व फिक्र कर पा रहे हैं कि कभी किसी से ज्यादती तो नहीं की? हमारे अपने बैक होम में लोग अपने कामों के लिए, खिदमत के लिए यंग बच्चियों को, छोटी बच्चियों को रख लेते हैं, फिर उठते बैठते उनको से सुनाते हैं, बुराई ना करें, लेग पुलिंग ना करें, उसके हक में दुआ कर लें, बहुत ना मिलें, हर वक्त मिलना वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं होता। तो बहरहाल फिर अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी देगा इंशाल्लाह। ठीक है,